ओम शांति। आज के तीसरे दिन की भट्टी का अभी का हम सबके लिए विषय है संपूर्ण पवित्रता, जो पिछले कई दिनों से बाबा विशेष अंडरलाइन तो मुरलियों में भी करा रहे हैं और ये हमारा मूल मंत्र भी है, पहली धारणा भी है, पर फिर भी हमें उसकी संपूर्णता को पाना अभी बाकी है। तो हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी हैं, जिनको हम सभी पीस ऑफ माइंड में देखते ही है, अनेक विंग्स के कॉन्फ्रेंसेस में तो आप रहते ही हैं, शांतिवन में विशेष रूप से राजयोग शिविर सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी आपका विशेष सेवा क्षेत्र है। आपने अपना मेडिकल ग्रेजुएशन करके और अपनी सेवाएं विभिन्न स्थानों पर पहले दी, जयपुर और कई स्थानों पर, और ग्लोबल हॉस्पिटल में 1991 से आप ऐसे डॉक्टर अपनी सेवाएं देते रहे और 2000 के सन से संपूर्ण रूप से मधुबन में ही रहकर और मधुबन की वैरायटी सेवाएं आप कर रही है। दादी प्रकाशमणि जी के अंग संग आपने उनके पर्सनल असिस्टेंट के रूप में लंबे समय तक उनकी पालना और उनके सहयोग की सेवा भी की, तो आप मधुबन की एक अनन्य रत्न है। जो हमारा राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन है, उनकी जो वुमन एम्पावरमेंट विंग है, उनकी भी आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है। बहुत ही मृदुभाषी और अनेक प्रकार की सभी दादियों के संग रहकर अनुभवी ऐसी आत्मा आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी का हम एक हाथ की ताली से इस भट्टी में वेलकम करते हैं। दीदी विशेष रूप से अमृतसर, बाकी कुछ कुछ और स्थानों के भाई बहने आए हैं और अभी हम दीदी से संपूर्ण पवित्रता पर सुनेंगे।
ओम शांति, ओम शांति। पांडव भवन में 3 दिन की भट्टी करके सब अपने आप को चार्ज्ड फील कर रहे होंगे ना? क्योंकि पांडव भवन में भट्टी करना माना हाँ जी मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही योग लगा रहता है बाबा से। ये विशेषता है इस स्थान की, क्योंकि ये स्वयं ब्रह्मा बाबा की भूमि है। हमारी मातेश्वरी दादियां भी सब यहाँ रही वर्षों तक, तो उसके वाइब्रेशंस, उसका प्रभाव यहाँ पर है। तो जैसे कि विषय है संपूर्ण पवित्रता, तो हम सभी ब्राह्मण तो पवित्रता के महत्व को जानते हैं, क्योंकि हम हैं ही ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, तो हमारे जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है, या आधार ही पवित्रता है, या नवीनता ही कहो ब्राह्मण जीवन में पवित्रता है, या श्रृंगार कहो ब्राह्मणों का, अलौकिकता ही यही है। और शुरू से ही जब से शिव बाबा ने ओम मंडली की स्थापना की, तब से ही पवित्रता का महत्व बाबा ने समझाया कि नई दुनिया की स्थापना किसके बल पर होनी है, पवित्रता के बल पर ही होनी है। तो भी विघ्न शुरू हो गए, जितने भी विघ्न आए आदि काल से आदि समय से, वो किसके लिए आए? बाबा को कहा, ब्रह्मा बाबा को कहा, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बस एक बात हटा दो, है ना, तो फिर हजारों नहीं आपके लाखों फॉलोवर्स फटाफट हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो खुद ग्रस्ती हूँ, तो ये कौन कहता है? शिव बाबा कहता है, जिसे इस दुनिया को नई दुनिया बनाना है। और आज तक भी है ना, चाहे वो आदिकाल रहा हो, आज भी जो ब्राह्मण बनते हैं, नए नए ब्राह्मण बनते हैं, आज की भी मुरली में बाबा ने कहा ना, ये पेपर तो सभी को पास करना ही पड़ता है ना। चाहे आज बाबा ने कहा बच्चों पर अत्याचार होते हैं, अगर वो पवित्र रहना चाहते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, ज्ञान में चलते हैं। अब सारा परिवार तो एक साथ ज्ञान में नहीं चलता है, तो जो नहीं चलते हैं फिर वो क्या करते हैं, उनके लिए विघ्न रूप बन जाते हैं। फिर चाहे वो माताएं हैं, बांधेली कहलाती हैं, भाइयों के साथ भी अगर भाई ज्ञान में चलते हैं, माता ज्ञान में नहीं चलती है, तो भी वही स्थिति होती है। तो पवित्रता के लिए बाबा बिल्कुल भी रियायत नहीं देते हैं, और संपूर्ण पवित्रता की बहुत गहराई है। माना खाली ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पवित्रता नहीं है, ये तो पहला स्टेप है। पवित्रता का फर्स्ट स्टेप है ब्रह्मचर्य का पालन करना, लेकिन बाबा कहता है ये है ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला, या ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखने वाला, उसे हम संपूर्ण पवित्रता कहेंगे। बाबा ने जो संकल्प बोल और कर्म किए, ऐसे ही संकल्प बोल और कर्म हमारे हों। फिर उससे भी आगे बाबा कहता है संपूर्ण निर्विकारी बनना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत, यानी उसके जो बाल बच्चे हैं, हाँ, मोटे रूप में विकार तो है ही, लेकिन उसके जो साथी हैं उन पर भी विजय पाना, और सूक्ष्म अंश वंश के रूप में भी इम्प्यूरिटी ना हो। विकार का अगर अंश वंश भी आता है तो भी बाबा कहता है वो इम्प्यूरिटी है, और यहाँ तक कि सपने में भी अगर आता है, सपने में अगर किसी का ब्रह्मचर्य भंग होता है, या सपने में किसी आत्मा के प्रति क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, आवेश आ जाता है, तो भी वो संपूर्ण प्यूरिटी नहीं है। यानी सब कॉन्शियस माइंड तक हमारे अब विचार ही खत्म हो जाए, यानी मनसा वाचा कर्मणा तीनों लेवल पर वो पवित्रता हो। फिर उसके भी आगे बाबा कहते हैं कि अगर हमारी दिनचर्या में भी अलबेलापन है, जो अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा ने हमें दिनचर्या दी है, उस दिनचर्या में हम ऊपर नीचे करते रहते हैं, हाँ, कभी तो हम उठ गए, कभी नहीं उठे, कभी मुरली सुन ली, कभी नहीं भी सुनी, जो भी हमारी और भी धारणाएं हैं, तो उसमें अगर हम एक रस नहीं हैं, तो भी हम पूर्ण पवित्र नहीं हैं। उसके भी आगे बाबा कहता है, जैसे संडे की मुरली में बाबा ने कहा, अगर व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं, एक है सदा समर्थ संकल्प चले, और कोई भी बात को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर के मेरे मन में व्यर्थ संकल्प शुरू हो गए, तो वो भी संपूर्ण पवित्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प आना माना अशांति पैदा होना मन के अंदर, और अगर दुख और अशांति की फीलिंग है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर प्यूरिटी है तो मन सदा ही सुख और शांति की स्थिति में रहेगा। अगर कहां भी दुख अशांति जरा भी हमें अनुभव होती है, इसका मतलब इम्प्यूरिटी आ रही है हमारे अंदर। और वो व्यर्थ संकल्पों का क्या कारण होता है, वो भी बाबा ने संडे के मुरली में बताया है। तो बाबा ने कहा कि जो प्यूरिटी है, प्यूरिटी कि इतनी महानता है, जो भी संपूर्ण पवित्र होते हैं, आज की दुनिया में तो संपूर्ण पवित्रता का प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन फिर भी सन्यासी भी जो पवित्र रहते हैं, सिर्फ ब्रह्मचर्य का ही पालन करते हैं, तो भी जो नामी ग्रामी आत्माएं हैं वो उनके आगे जाकर झुकते हैं। हाँ, अभी कितना भी बड़े पोस्ट वाले हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या और भी जो हैं, वो जब ऐसे लोगों से मिलते हैं तो उनको क्या करते हैं, नमन करते हैं। तो क्यों? उनकी प्यूरिटी के कारण। आज जो जड़ चित्रों की पूजा हो रही है, भले ही हमारे ही यादगार हैं, देवी देवताओं के रूप में पूजा हो रही है, लेकिन क्योंकि पावन है इसीलिए पूज्य हैं, और पूजा की विधि भी देवी देवताओं की सबसे श्रेष्ठ है, और किसी भी धर्म पिता की, राजनेता की, अभिनेता की, बाबा कहते हैं ऐसे पूजा नहीं होती। कितने भी विश्व प्रसिद्ध आत्माएं हों, महान आत्माएं हों, नहीं होती। हमारी ये पूजा होती है क्योंकि हम डबल पवित्र बने। फिर देवताएं तो शरीर से भी पवित्र हैं, आत्मा भी पवित्र है उनकी, और भक्त भी अगर वो मूर्ति को टच भी करेंगे, यानी जब पूजा करते हैं तो पवित्रता की विधि पूर्वक ही करेंगे। जो पूजा करने वाला पुजारी होता है गर्भगृह में, वो बिल्कुल अलग होता है ना, किसी को भी मूर्ति को छूने नहीं देते हैं और विशेष दिनों में पवित्रता का महत्व रखते हैं। आज कुमारी का भी मान है तो वो प्यूरिटी के कारण उसका मान होता है। तो बाबा ने पवित्रता का इतना महत्व हमें समझाया है और उसके साथ साथ बहुत सहज कैसे हम पवित्रता को धारण कर सकते हैं वो विधि भी सहज दी है। है सहज विधि या मुश्किल है? जो भी सन्यासी या जो भी आज की दुनिया में कई होते हैं, भले सन्यास नहीं किया हो लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं, ऐसे भी हैं, तो वो भी युक्तियां निकालते हैं अपने लिए कि कैसे हमें अब ब्रह्मचर्य में रहना है। तो फिर जैसे बाबा ने मुरली में भी कहा, अभी दो दिन परसों ही मुरली थी जिसमें बाबा ने आंखों की बात की कि आंखें कितना धोखा देती हैं। तो सन्यासी क्या करते हैं, देखते ही नहीं है, पीठ दिखा देते हैं, माना स्त्री की तरफ पीठ ही रखेंगे कि ना दिखेगा ना, क्योंकि जब देखेंगे तभी वृत्ति जाएगी, अगर देखेंगे ही नहीं तो वृत्ति ही नहीं जाएगी। तो इसीलिए सन्यास में कहा गया नारी नरक का द्वार है। दोष किसके पर डाल दिया है? अपनी दृष्टि वृत्ति का दोष पर, दोष किस पर डाल दिया? तो वो फिर ये काम करते हैं, या फिर माँ के रूप में देखेंगे उसे कि हर स्त्री मेरी माँ है, जैसे रामकृष्ण परमहंस हुए, विवेकानंद हुए, फिर वो उन्हीं के शिष्य थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी माँ के रूप में देखा। या फिर वो अपनी ही तरह की कोई विधियां बनाते हैं जिससे कि वो पवित्रता का पालन कर सकें। लेकिन हमारी विधि क्या है? हमारी विधि है, बाबा ने कहा कि आपका निजी स्वभाव ही पवित्रता है। आत्मा पवित्र स्वरूप है और आदि अनादि पवित्र स्वरूप है, यानी परम धाम में जब हैं अनादि स्वरूप में तो भी पवित्र हैं, और जब हम आदि स्वरूप में, जब हम देवी देवताओं के रूप में आते हैं तो भी हम पवित्र हैं, और एक युग तक नहीं दो युगों तक 2500 साल तक आत्मा पवित्रता में रही है, तो वो हमारा संस्कार पवित्रता का ही है। तो ये स्मृति से समर्थि आ गई, बाबा ने हमें अपने स्वरूप की स्मृति दिलाई। तो स्मृति जब रहेगी कि हाँ मैं हूं कौन, मुझे मेरा वो स्वरूप याद आ गया, तो अपने आप ही हमारे अंदर वो पवित्रता की सामर्थ्य आ गई। फिर दूसरा, बाबा ने हमें प्राप्ति की स्मृति दिलाई, कितनी ऊंची प्राप्ति है पवित्रता की, जैसे अभी हमने समझा उसका महत्व। और फिर विश्व के जो मालिक हम बनते हैं, राजाई जो प्राप्त होती है उसका आधार क्या है? इस जन्म में पवित्र रहना। जितना हमारा पवित्रता का स्तर श्रेष्ठ होगा या जितना संपूर्ण पवित्रता की स्थिति होगी, उतना ही हम भविष्य तख्त के अधिकारी बनेंगे। अगर पवित्रता में कमी होगी तो उतना ही पद में अंतर आ जाएगा। तो प्राप्ति ऊंची है, इसीलिए एक जन्म थोड़ा सा समय अगर हमने वो पुरुषार्थ किया, हम पवित्र रहे, तो प्राप्ति को देखते हुए भी व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। दुनिया में भी कोई ऊंची प्राप्ति होती है तो उसके पीछे थोड़ी मेहनत भी करनी पड़े तो करते हैं ना, यहाँ तक कि दुनिया में देखते ना, उनको रात रात भर भी जागकर बिजनेस करना पड़े, क्योंकि अगर प्राप्ति हो रही है तो फिर वो करते हैं। तो हमारी जो पवित्रता की स्थिति है, वो स्थिति बाबा ने जैसे ही हमें स्मृति दिलाई, हमने हिम्मत रखी, फिर बाबा की मदद भी मिली हमको। हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो हमारे लिए सहज हो गया। तो घर गृहस्थ में रहते हुए भी दुनिया जिसे असंभव समझती है उसे हमने संभव करके दिखा दिया। दुनिया के सन्यासी भी जिसे असंभव समझते रहे, तो बाबा ने कहा आपने तो महात्माओं को भी चैलेंज किया कि हाँ हम घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र रहते हैं। और बाबा तो कितनी सावधानी बताते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हैं तो भी हमें कैसे रहना है। तो कहते हैं भाई बहन बना देते हैं। दुनिया में तो बदनाम ही है इसके लिए कि यहां मत जाना, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गई माना क्या है, क्या संबंध है? एक ही संबंध है, क्योंकि हम एक बाबा के बच्चे हैं, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। तो भले दुनिया के लिए वो संबंध है, लेकिन रियल में हम आत्मा रूप में तो और ही उससे ऊंची दृष्टि है हमारी। कौन सी दृष्टि है? आत्मा आत्मा हम भाई भाई हैं, भाई बहन भी नहीं, भाई भाई हो गए। और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो हम भाई बहन हो गए। तो बाबा तो हमें पूरा कि हमें घर गृहस्थ में रहते हुए भी इसी स्मृति वृत्ति और दृष्टि से चलना है, तब हमारी वो पवित्रता रहेगी। लेकिन अगर हम कहां देह अभिमान में आ गए, अब है तो कलयुग ना, और संस्कार भी हैं, फिर द्वापर कलयुग के संस्कार तो हैं आत्मा के अंदर। जहां हम देह अभिमान में आए, हम विस्मृति में आए, तब फिर दृष्टि वृत्ति चंचल होती है, जिसको बाबा क्रिमिनल आई कहता है। दैहिक दृष्टि हुई तो नजर कहां जाती है? अब जब देह को हम देखेंगे तो फिर देह में कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होती हैं। और आज की दुनिया तो क्या है, देह अभिमान की ही दुनिया है। माना लोग अपने आप की तरफ आकर्षित करने के लिए इतने तरह के प्रयास करते हैं। आप जैसे ही बाहर निकलेंगे ना, यहाँ मधुबन में बैठे हैं वो अलग है, लेकिन जैसे ही हम बाहर की दुनिया में कार्य व्यवहार में जाते हैं तो लोग कपड़े पहनते हैं ऐसे कि ना देखते हुए भी आप देखो। हाँ, वो मेकअप करेंगे ऐसा, या बाल बनाएंगे ऐसे। फिर हरेक के अंदर कोई ना कोई तो विशेषता होती है, किसी की आंखें अच्छी होंगी, किसी के बाल अच्छे होंगे, किसी की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। और अगर मेरी दैहिक दृष्टि है तो मेरी नजर उस पर गई तो बाबा ने कहा, अगर आपने देह को टच किया तो किसको टच किया? और सांप को टच किया, माना सांप में विष होता है, और वो विष प्रभाव न डाले हो नहीं सकता। दुनिया में भी जो विष होता है वो खत्म करने वाला होता है, तो ये विष का असर भी एक बार हो गया तो आप उससे बच नहीं सकते। ये ऐसा विष होता है, और ऐसा ही होता है। और फिर बाबा ने कहा, अगर आप उसके प्रभाव में आ गए तो आप कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही योगी हो, आपने योग से शक्तियां जमा की हैं, आपने बहुत सेवा की है, तन मन धन से कमाई जमा कर रहे हैं ना अभी, लेकिन वो सारी कमाई किस खाते में गई? किस खाते में गई? बाबा कहता है साकार मूली में की कमाई चट हो जाती है। तो और शब्द भी बाबा कहते हैं, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो ये पांचवी मंजिल से गिरने के समान है। माना बाबा इतने कड़े कड़े शब्द कहते हैं इसके लिए। तो बाबा कहता है कि अगर हमने जरा अटेंशन नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा, तो हम अपनी सारी पिछली कमाई या पुण्य का खाता जो हमने जमा किया है वो हम खत्म करने वाले हैं। फिर बाबा कहता है कि अगर ये कमजोरी है, अभी भी दृष्टि जाती है मानो, तो फिर 21 जन्मों वाली प्राप्ति की मंजिल टिक नहीं सकती और हम राजाई पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और बाबा ये भी कहता है कि अगर ब्राह्मणों के ऊपर दृष्टि जाती है, मानो है हमारा संबंध अभी क्या है, भाई और बहन का, लेकिन किसी ब्राह्मण आत्मा के ऊपर दृष्टि जाती है, प्रभावित हो जाते हैं। सूक्ष्म रूप क्या आता है? उसकी कोई भी बात से, उसके गुणों से, उनकी विशेषताओं से, उनकी सेवाओं से, या उनके पालना देने के तरीके से, उनके योग से, स्थिति से, या वो हमारे बहुत स्नेही सहयोगी हैं, उससे कोई भी बात से हम प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित हुए और फिर हम उसकी तरफ झुकते हैं, माना अच्छा लगता है। बाबा कितने शब्द क्या यूज करते हैं, इनसे मिलना अच्छा लगता है, इनसे बात करना अच्छा लगता है। तो बाबा कहता है अच्छे लगते हैं तो सभी अच्छे लगते हैं, और कोई ज्यादा अच्छा लगता है तो ज्यादा अच्छा लगता है तो हाँ, क्योंकि हम संपूर्ण पवित्रता की बात कर रहे हैं, नहीं तो सब चलाते हैं, अरे इतना तो चलता ही है, हाँ ऐसे कौन बना है, अभी चल तो रहे हैं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम संपूर्ण पवित्रता की बात करते हैं तो बाबा फिर हमें सारी बातों का अटेंशन खिंचवाते हैं। तो फिर अगर हमने मतलब जैसे कहा कि क्या बात कर रहे थे, हाँ अच्छा लगता है, तो ये मुझे अच्छा लगता है, बाबा कहते हैं यही दाल में काला है, अच्छा लगता है तो अच्छा बनाने वाला कौन, बाबा बनाने वाला है, जो भी उसके गुण विशेषताएं कलाएं हैं वो भरने वाला कौन। तो हम दाता को भूल जाते हैं और उसकी अच्छाई को देखकर उनके लगाव झुकाव में आ जाते हैं, और अगर हम लगाव में आए, मानो किसी भी आत्मा के लगाव में आए, तो दूसरों की नजर जाती है, क्योंकि तुरंत पता चल जाता है, जो भी एक्स्ट्रा होता है वो पता चल जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि धुआं कब उठता है, जब आग होती है, बिना आग के तो धुआं नहीं उठेगा, तो लोग इशारा देना शुरू कर देंगे, है ना। ये दुनिया में भी नहीं छोड़ते, तो ब्राह्मणों की तो बात और है, लौकिक दुनिया में भी अगर कोई ज्यादा किसी से मिलते उठते बैठते हैं तो लोग बताना बोलना शुरू कर देते हैं कि इनका कुछ लगता है। तो यहाँ ब्राह्मणों में भी अगर किसी को थोड़ा भी नजर आता है, लगता है, तो वो इशारा देते हैं, भाई ये ठीक नहीं है। तो फिर क्या कहते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता नहीं, हम तो सिर्फ बात ही करते हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। तो बाबा कहता है कि अगर कोई इशारा देता है हमें, और अगर हम उसका स्पष्टीकरण देते हैं, ज्यादातर फिर हम उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ गलत है ही नहीं, तो अगर हम स्पष्टीकरण करते हैं तो बाबा कहते हैं ये आप अपने पाप की लकीर को और लंबा करते हो, स्पष्टीकरण नहीं देना है। अगर कुछ है नहीं तो कुछ नहीं ही कर दो, बात ही खत्म कर दो, यानी किसी की नजर, दोबारा कोई हमको इशारा देवे ऐसा कोई कर्म ही हम ना करें, तो जो भी एक्स्ट्रा कुछ है उसको यहाँ ही फुल स्टॉप लगा दो। ऐसे ही एक बार हम मधुबन में, यहाँ जब मैंने रहना शुरू किया, यहाँ डिस्पेंसरी में मैं सेवा करती थी, पांडव भवन डिस्पेंसरी, जो अपनी बाबा डिस्पेंसरी है, तब बहुत कम बहनें थी यहाँ पर, मुश्किल से हम दो तीन यंग बहनें थी, और हम तो हॉस्पिटल के लिए आए थे, हॉस्पिटल अभी बना नहीं था यहाँ पर, तो डिस्पेंसरी में सेवा कर रहे थे, और बाकी जो बहनें थी सब अधिक आयु, माना बुजुर्ग बहनें थी। तो सब जो भी मधुबन के भाई हैं सब आते हैं, अब जो भी जिसको प्रॉब्लम है उसको हम दवाई वगैरह देंगे नेचुरली, जब डिस्पेंसरी में बैठे हैं। तो यहाँ पर गर्मी के मौसम में जंगली फल बहुत होते हैं, आपने देखा आम लगते हैं, जामुन लगते हैं, करौंदे होते हैं, यहाँ पर बाबा भी खिलाते थे सबको। तो भाई लोग जंगल में जाते हैं, तोड़ कर ले आते हैं वो। तो मैं डिस्पेंसरी में बैठी थी और एक दो भाई जो हैं वो ये लेकर के आए, करौंदे और जामुन, और उन्होंने मुझे दिया कि बहन जी आप भी खाना, ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने कहा अच्छा बाबू के जंगल के हैं। एक माता जी खड़ी थी वहां पर, और मैं तो नई नई थी, मैं जानती ही नहीं थी, वो माता जी कोई हमारी बड़ी दीदी की रसोई में सेवा करते थे। तो मैंने ले लिए और वो भाई चले गए देख करके, पर उसने मेरी शिकायत कर दी कि ये जो बहन है, अब क्योंकि हम बिल्कुल ही यूथ थे उस समय, एकदम ही नए आए थे, पास करके ही आई थी मैं तो यहाँ पर, तो कहा कि ये बहन जी ने, है ना, ये भाइयों ने इनको दिया और इन्होंने लिया। तो मुझे बुलाया उन्होंने, उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी शिकायत आई है आपकी, आप डिस्पेंसरी में सेवा करते हो, थोड़ा ध्यान रखो। तो मैं तो एकदम मतलब आश्चर्यचकित हो गई, मैंने कहा अच्छा ऐसे भी कोई बात होती है, क्योंकि ऐसा कुछ भान ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसा कुछ आया है तो आगे से मैं और भी ध्यान रखूंगी इस बात का कि मुझे किसी से कुछ लेना ही नहीं है, ताकि कभी कोई ऐसी बात कोई कहे। तो फिर मैंने उनको वही दीदी को कहा, मैंने कहा ठीक है मुझे नहीं पता था, पर नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा होगा तो कोई आगे से भी मुझे देगा तो भी मैं लूंगी नहीं, आप निश्चिंत रहो। और बाद में तो कभी हमने वो भाइयों से जो भी देखे गए थे, माना एक तरह से कि उसको कहते ना थोड़ा हम किनारा करते हैं कि थोड़ा दूर ही रहें ताकि कभी भी ऐसा दोबारा ना हो। तो ये बाबा कहता है कि अगर कुछ नहीं है तो उसको कुछ नहीं ही कर दो, खत्म ही कर दो, फुल स्टॉप ही लगा दो। तो नहीं तो हम फिर अगर सिद्ध करने जाएंगे तो और ही हम अपने पाप को बढ़ा रहे हैं। तो प्यूरिटी के लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि अगर ब्राह्मण आत्मा पर कभी हमारी नजर गई तो वो जैसे कुल कलंकित करना है। जैसे लौकिक में भी अगर किसी भाई की अपनी बहन पर नजर जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, है ना। भले आज कलयुगी दुनिया है, कोई कोई ऐसे केस हो भी जाते हैं, वो तो विकृत मानसिकता हम उसे कहेंगे, लेकिन यहाँ भी ब्राह्मण कुल में भी ना बहन की भाई पर और ना भाई की बहन पर जानी चाहिए। बाबा कहता है कौन सी नजर से देखो, हमेशा देखो कि ये शिव शक्ति है, ये त्यागी और तपस्वी आत्मा है, ये देवी स्वरूप है, क्योंकि देवी देवता बनने वाले हैं तो देवी स्वरूप है। इसके अलावा यानी मस्तक मणि के अलावा कहीं नजर जानी ही नहीं चाहिए। किसको देखना है, हमें शरीर को तो देखना ही नहीं है। ऐसे ही भाई हैं तो उनको समझो ये महावीर हैं, और महावीर के दिल में क्या दिखाते हैं, सदा राम, एक राम दूसरा ना कोई, वो तो दिखा रहे हैं, सीना खोल के उसने दिखाया अपना कि मेरे सीने में कौन है, राम ही बसता है। तो सदा जो हमारा संबंध है वो बाबा के साथ है, जो भी हमारी प्राप्तियां हैं वो बाबा से हैं। कभी भी ये नहीं सोचना क्यों हमारी दृष्टि जाती है किसी के भी ऊपर। बाबा कहते हैं बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं है, और जो प्राप्तियां हम चाहते हैं, है ना, जिसके लिए मनुष्यों पर नजर जा रही है, वो क्या बाबा से नहीं हो सकती, हो सकती नहीं हो सकती। तो वो प्राप्ति हम बाबा से करें तो इसका मतलब हमें सिर्फ अभी तक ज्ञान है लेकिन अनुभव नहीं है। ज्ञान है, समझ लिया बाबा से सर्व संबंध है, बाबा से ही हमारा संसार है, सब प्राप्तियां हैं, लेकिन अनुभव नहीं किया है। तो बाबा जब भक्तों को भी अनुभव करा सकते हैं तो क्या अपने बच्चों को अनुभव नहीं करा सकते। मानो जैसे हम कहते हैं माता पिता शिक्षक गुरु, ये तीन संबंध तो मुख्य हैं ही, लेकिन उसके बाद लोग कहते हैं नहीं, एक कंपेनियन या एक फ्रेंड तो होना ही चाहिए, या नहीं तो कोई ऐसा हो जिससे हम दिल की बात कर सकें, क्योंकि लाइफ में कितनी ऐसी बातें आती हैं जो हमें मन हल्का करने की जरूरत होती है, तो फिर हम किसी को अपना सहारा बना लेते हैं, या सखी सखा जिसको बाबा कहता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए ना, कोई गलत दृष्टिवृत्ति की बात नहीं, साथी बना लेते हैं। साथी बनाना माना जैसे फ्रेंड बनाना, तो अगर हमने किसी व्यक्ति को भी फ्रेंड बनाया, उससे भी हमने कामना रखी, बाबा कामना को भी काम विकार का अंश कहता है, तो फिर बाबा से वो संबंध तो हमारा हल्का हो गया ना। फिर एक बाबा ही मेरा नहीं रहा, एक बाबा भी है और दूसरा ये भी है, इसके बिना भी मेरा काम नहीं चलता। बाबा कहते कई बार सेवा में भी एक्सक्यूज देते हैं, है ना, सेवा इनके बिना तो सेवा हो ही नहीं सकती, जो ये कर सकते हैं वो तो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, तो हम उसका भी चांस लेते हैं कई बार ना। तो फिर क्या दिल की बात इंसान को ही सुनानी है, मनुष्य को ही सुनानी है, हमें भगवान नहीं सुनता हमारे दिल की बात। फिर कहते नहीं, शिव बाबा तो निराकार हैं, शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा तो फरिश्ता है, आकारी है, और जब बहुत मन उलझन में होता है तो योग ही नहीं लगता है बाबा से। फिर चलो हमने बाबा को सुना दिया, पता नहीं बाबा ने सुना कि नहीं सुना, फिर तुरंत जवाब तो मिलता ही नहीं है, और जवाब हमें चाहिए तुरंत चाहिए, क्या कहेंगे? सारी प्रॉब्लम्स तो आती है ना, क्या कहेंगे? तो फिर किसी इंसान का सहारा तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, जो समझते हैं चाहिए वो हाथ उठाओ। कोई भी नहीं उठा रहे हैं। तो बाबा पर अगर हमें पूरा निश्चय है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसी समय हमारे निश्चय की परीक्षा होती है। थोड़ा तो बाबा परीक्षा लेगा ना हमारी। तो अगर बाबा पर पूरा निश्चय है हमारा, और बाबा को उसी निश्चय से हम कहते हैं, चाहे कितना भी उलझन में है, चाहे कितना ही भारी है, हाँ, बोझ है हमारे पर, लेकिन हमने बाबा को दिल से कहा। बाबा तो कहता है दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा आपके लिए उसी सेकंड हाजिर है, मेरा हुजूर जो है वो आपके लिए हाजिर हो जाएगा। तो हम अपने आप महसूस करेंगे कि हमारे अंदर वो हिम्मत आ गई, वो शक्ति आ गई। और नहीं तो बाबा किसी को निमित्त बना देगा। हम नहीं तो कोई ना कोई आत्मा जो है वो आपके सामने ऐसे आ जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा, ऐसे भी बाबा ने मुझे इस परिस्थिति से पार करा दिया। होता है ऐसा अनुभव, ये भी होता होगा, किसी किसी को तो हाथ उठा सकते हैं। देखो वो ज्यादा को होता है, मेजोरिटी को, भाइयों को नहीं होता। क्योंकि जो भी ये अनुभव बाबा से हमारे हो, उसके लिए हमें बहुत निमित्त निर्माण और निर्मल होना है। जहां थोड़ा भी मैपन होगा वो बाबा से हमें थोड़ा दूर कर देता है। तो भाइयों में थोड़ा मैपन ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि माताएं बहनें जो है उनसे थोड़ा ये कम अनुभव होता होगा कि तुरंत बाबा मेरे लिए हाजिर है। क्योंकि बाबा तो भोलों का बाबा कहता है ना, सच्चा दिल, और जितना हमारे अंदर वो सरलता है, भोलापन है, तुरंत बाबा का रिस्पॉन्स हमें मिलता है। तो प्यूरिटी माना ही एक बाबा दूसरा ना कोई। किसी भी मनुष्य आत्मा पर हमारी नजर चाहे ही नहीं, उस आत्मा से हमारी कोई कामना नहीं हो, कोई किसी भी व्यक्ति से हमारी इच्छा ना हो। हम दाता के बच्चे, देने वाले हैं। इवन वस्तुओं के प्रति भी होता है, व्यक्तियों के प्रति तो कामना होती ही है, लेकिन वस्तुओं के प्रति भी, ये वस्तु अच्छी लगती है, उसमें भी कि ये मेरे पास होनी चाहिए, ऐसा मेरे पास होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं लोभ विकार का अंश वंश प्रकट होता है। कामना चाहिए चाहिए, वो किसका अंश वंश है? तो वो भी इम्प्यूरिटी है। अगर वस्तुओं की भी कामना या साधनों की भी कामना, इच्छाएं पूरी हमारे सामने आती है, इसीलिए बाबा हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति की बात कहते हैं। तो बाबा जो कहते हैं हमें, जैसे प्यूरिटी की और सूक्ष्मता के रूप में, कई बार कुमारी की बजाय, माना स्त्री पुरुष की बजाय, कुमारियों का भी कुमारियों के प्रति लगाव हो जाता है ना, आपस में वो एक दो के आकर्षण में आ जाते हैं। या जो भाई होते हैं वो भाइयों का भाइयों के प्रति भी हो सकता है। दुनिया में इसको कहते हैं गे हो जाते हैं ना, ये भी मानसिक विकृति है। तो ये भी नहीं, उसको अगर हम गलत नहीं समझते ना, ये कोई भाई की तरफ तो मेरा झुकाव नहीं है, हम तो आपस में बहने ही हैं, मतलब बहनों के बहने ही आपस में एक दो को पसंद करते हैं। विदेशों में तो ये होता है कि आपस में शादी भी कर लेते हैं। इवन सुना होगा आप लोगों ने कि किस तरह से, जी, समलैंगिकता बोलते हैं उसको, है ना। तो आपस में भाई भाई ही मिलकर साथ रहते हैं, या बहने बहने ही मिलकर साथ रहती हैं। तो ये भी इम्प्यूरिटी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई, अगर ऐसा है तो ये कोई इम्प्यूरिटी नहीं है या अपवित्रता नहीं है। तो बाबा इसीलिए उसको बहुत महीनता से हमें समझाते हैं कि किसी पर भी हमारी वो वृत्ति नहीं जानी चाहिए। बाबा कहता है कि ऐसे समझो कि मैंने, माना अपने आप को खुद ही सजा दो। अगर मानो ये कमी है हमारे अंदर, अपनी चेकिंग हमें खुद ही करनी है। कोई दूसरा तो हमें तब बताएगा जब बात कर्म तक आती है, तब उसको पता चलता है। लेकिन अंदर में क्या चलता है वो तो हम ही जानते हैं। तो फिर अपने आप पर खुद ही नजर रखो और अपने आप को कड़ी सजा दो। जब तक आप खुद को सजा नहीं देंगे, अगर इसको हल्के रूप में लेंगे तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि आज का जो वातावरण है, दुनिया का जो वातावरण है, आज जो भी हमारे सामने हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, दुनिया को बाबा वैशाली क्यों कहता है, सब तरफ क्या है आज, जहां भी आप निकलते हो, चाहे वो चित्र दिखाई देते हैं, चाहे विज्ञापन दिखाई देते हैं, चाहे लोगों के अपने हाव भाव दिखाई देते हैं, एक्ट दिखाई देते हैं, सब तरफ क्या है। और अगर हम देखते भी हैं मानो, वैसे तो बाबा की श्रीमत अनुसार तो हमें नहीं देखना चाहिए कुछ भी, जो भी टेलीविजन पर या ये हमारे मोबाइल पर, आजकल तो मोबाइल पर भी सब कुछ है, या अगर हम कुछ ऐसा पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी बच तो नहीं पाते हैं। तमो प्रधान वातावरण में, घर परिवार में हम रहते हैं, तो ये सारे दृश्य हमारे सामने आते रहते हैं। तो अगर हमने जरा भी सावधानी नहीं रखी तो कब हमारे ऊपर उसका प्रभाव आ जाएगा हमें पता भी नहीं चलता, और अगर प्रभाव आ गया तो फिर हमारी पवित्रता की धारणा उस पर असर आ जाएगा। तो ये हमें इसीलिए बाबा कहता है कि अपने ऊपर कड़ी नजर रखो, कि या तो बिल्कुल देखो ही नहीं, और अगर आप देख भी रहे हैं तो जैसे देखते हुए भी हमने नहीं देखा, उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इतनी परिपक्व अवस्था है, जैसे बाबा मुरलियों में कई बार कहते हैं कि बाबा सिनेमा देखने के लिए मना करते हैं, सिनेमा सिन की माँ है, लेकिन कोई कोई बच्चों को बाबा कहते हैं देखो, देख के आओ। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा को इन पर विश्वास है कि इनकी इतनी परिपक्व अवस्था है कि अगर वो देखेंगे भी तो भी उन पर उसका कोई असर नहीं होने वाला है। तो हमारी देखने की धारणा, जिसको बाबा कहता है इंद्रियों पर हमारा अधिकार हो, आंखों से ही हम देखते हैं सब, और सबसे ज्यादा जो प्रभाव आता है वो आंखों से ही आता है, तो आंखों पर हमारा कंट्रोल हो कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है। अब मोबाइल नहीं देखना है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन क्या देखना है वो देखें हम, जो हमारे पुरुषार्थ में, उन्नति में हमें मदद करे। ऐसी भी बहुत सी चीजें हैं मोबाइल में, आज कितना तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं हम मोबाइल को यूज करके, लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं, फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं, सब कुछ उपलब्ध है हमें वो मोबाइल के अंदर, जो भी है क्लासेस हैं, जो है ना, और भी जो भी हम चाहते हैं, वो मुरली सुनना, वो सब हमें मोबाइल से मिलता है, या टेलीविजन में भी हमारे अपने चैनल भी आते हैं। तो सदुपयोग करना कि वो हमें उन्नति में मदद करे, हमारी स्थिति बनाने में हमें मदद करे, और नहीं तो गर्त में भी ले जा सकता है। और ये तो जैसे कि ज्यादा खिंचाव किसकी तरफ होता है, व्यक्ति का, नेगेटिव की तरफ होता है। दुनिया में भी देखो, बच्चों को आप कुछ दिखाएंगे ना तो उसमें पॉजिटिव बातें भी होती हैं, नेगेटिव बातें भी होती हैं, पर बच्चे सीखते क्या है ज्यादा, वो रावण की नकल ज्यादा करेंगे राम की बजाय, क्योंकि राम बनना तो मुश्किल है, रावण बनना आसान है। तो यहां भी ऐसे ही होता है कि नेगेटिव की तरफ आकर्षण थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो अगर हम जरा भी उस तरफ गए तो कहां गए, तो माया तो खींचने के लिए तैयार बैठी है। माया का तो काम ही है हमें बाबा से विमुख करना, बाबा से हमें दूर करना। तो बाबा हमेशा कहता है कि हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर हमने कहां भी अपनी पवित्रता की धारणा को कमजोर किया तो हम राजाई पद पा नहीं सकेंगे। और ये समझो कि जैसे एक बहुत गंदा सा सीन क्रिएट करके रखो मुरली में। बाबा ने कहा था कि जब कोई ऐसे अपवित्र ख्याल आते हैं मन में, तो ऐसे सोचो कि मैंने सिर पर जैसे कि जमादार कचरे का टोकरा लेकर के सिर पर जा रहा है, तो एक तरफ ताज वाला चित्र है और दूसरी तरफ कचरे का टोकरा सिर पर उठाया हुआ जमादार का चित्र है, तो ये सोचो कि अभी मैं क्या बन गया हूँ, क्या बन गई हूँ। तो ऐसा ऐसा सोचते ही क्या होगा, तुरंत वो विचार हमारे तो अपने आप को रियलाइज कराओ ये कि ये कितनी हमारे लिए गिराने वाली चीज है, इतनी कड़ी मतलब दृष्टि अपने ऊपर रखनी है संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कि बिल्कुल मनसा में भी कभी हमें वो ख्याल ही ना आए, तब वो स्वप्न तक जाकर के हमारी पवित्रता की स्थिति बनेगी। फिर उसके लिए हमें रोज मुरली सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि समर्थ संकल्प हमें कहाँ से मिलेंगे। जैसे कहा ना कि व्यर्थ संकल्प चलना भी अपवित्रता है, तो व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, बाबा ने मुरली में कहा, अभिमान और अपमान में आ जाते हैं। जरा भी मान शान में ऊपर नीचे हो गया तो बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मेरे को पूछा नहीं, मेरे को जानते नहीं, मेरी विशेषता को समझते नहीं, हम भी तो ये कर सकते हैं, हम भी तो इस योग्य हैं, ये सब क्या है, कौन से संकल्प हैं। तो इस प्रकार के व्यर्थ संकल्पों में फिर कोई भी बात हो गई क्यों क्या में हम चले जाते हैं, कोई भी व्यक्ति के प्रति हमारा हिसाब किताब है तो कितना क्यों क्या में व्यर्थ संकल्पों में बुद्धि चली जाती है। तो व्यर्थ संकल्प हमारे चले किसी भी बात को लेकर के, तो ये भी हमें अटेंशन रखना है कि जब हम रोज मुरली सुनेंगे तब वो समर्थ संकल्प हमें मिलते रहते हैं, और फिर उसका चिंतन मना विचार सागर मंथन भी हमें करना है। जब तक श्रेष्ठ स्मृति नहीं है हमारी, सांसारिक स्मृतियों में मन चला जाता है, तो सांसारिक स्मृतियों में अगर हमारा मन है तो व्यर्थ की तरफ खिंच जाएगा, लेकिन हमेशा ज्ञान की स्मृतियों में मन रहे, कोई ना कोई सुमान की स्थिति रहे हमारी, वही समर्थ बनाने वाला है। या बाबा ने आज विशेष क्या बात कही, जैसे आज की मुरली में बाबा ने विशेष क्या कहा, क्या कहा, अपने ऊपर रहम करना है। तो कैसे रहम कर पाएंगे अपने ऊपर, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे ना, रावण की मत पर नहीं, रावण की मत उल्टा कर्म कराती है। फिर सवेरे सवेरे उठकर क्या करना है, रोज बाबा को याद करना है, बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। अमृत वेला अगर हमारा पावरफुल हो गया, बाबा से हमने सर्व संबंधों का अनुभव कर लिया, सबसे अच्छा टाइम भगवान का प्यार पाने का कौन सा है, तो अगर हमने अमृत वेले उस प्यार का अनुभव कर लिया तो फिर सारे दिन कोई कैसा भी इंसान हमें मिले उसके प्यार की तरफ हमारी बुद्धि कभी आकर्षित नहीं होगी। अगर हम भरपूर हैं, खाली होंगे तभी बुद्धि जाएगी। आकर्षण कब होती है, जहां हम खाली हैं। अगर हम भरपूर हैं तो हम देने वाले हैं, हमसे आत्माएं लेंगी, यानी वो हमारी तरफ आकर्षित होंगी, लेकिन ऐसे आकर्षित नहीं करना है कि वो मेरे लगाव में आ जाए। हाँ, आकर्षित करने का मतलब बाबा का ये नहीं है, आकर्षित करने का मतलब बाबा के तरफ आकर्षित हो, ज्ञान की तरफ वो आत्मा आकर्षित हो। तो किसी का प्रभाव भी मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। एक होता है हमने अपनी सावधानी रखी, है ना, और एक होता है कि वातावरण का प्रभाव मेरे ऊपर आ गया। जैसे कहा कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं तो हम एक्सक्यूज देते हैं, क्या करें, लोग ही ऐसे थे ना, वातावरण ही ऐसा था ना, तो इसके कारण ऐसा हो गया। तो बाबा कहता है भाषा ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम कौन है, हम विश्व परिवर्तक हैं। हमें बाबा ने ये जिम्मेवारी दी है विश्व के कल्याण करने की, प्रकृति को भी पावन बनाने की जिम्मेवारी दी है। मनुष्य आत्माओं को तो छोड़ो, पतित पावन कौन है, शिव बाबा पतित पावन है, तो बाबा ने हमें भी तो मास्टर पतित पावन बनाया है, पतित पावनी है या नहीं। तो जब पतितों को पावन बनाने वाले हैं तो उनकी अपवित्रता से मेरे अंदर अपवित्रता आ गई, तो फिर हम कौन हुए, हम पतित पावन हुए या हम कमजोर बन गए। तो हमेशा हमारी पवित्रता से अगर कोई पतित दृष्टि वाली आत्मा भी मेरे सामने आ रही है तो उसकी वो पतित दृष्टि ही खत्म हो जाए। और दादियां ये अनुभव सुनाती थी, जब वो शुरू शुरू में सेवा पर निकले तब लोगों को थोड़ी ब्रह्मा कुमारी इसका पता था, तो बहने सेंटर चलाती हैं और बहने कोई इतना ऊंचा ज्ञान सुना सकती हैं ऐसे लोग सोच ही नहीं सकते थे। तो कई लोग जो घुसते थे सेंटर में वो गलत नजर से जाते थे, गलत उससे इंटेंशन से जाते थे, और जब दादियों से मिलते थे उनकी प्यूरिटी की पावर तो थी ना, क्योंकि जब प्यूरिटी है तो उसकी झलक और फलक चेहरे पर होती है, रूहानियत होती है। हम सब जानते हैं जो भी ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं और जिनकी प्यूरिटी की धारणा अच्छी है उनके चेहरे से वो झलकती है नहीं झलकती, तो दादियों को देख करके ही कोई सोच भी नहीं सकता। और फिर जब ज्ञान सुनते थे तो पूरी तरह से परिवर्तन, और ऐसे बाबा के वारिस बच्चे बने उनमें से, ऐसे लोग फिर वो खुद रियलाइज करते थे कि हम सोच करके क्या आए थे और क्या से क्या हम बन गए और क्या से क्या हो गए। तो पतितों को पावन बनाने वाले, क्योंकि बाबा ही आया पतित दुनिया में है, हमको भी तो बाबा ने पावन बनाया ना, हम भी पहले कौन थे, उन्हीं में से एक थे। आज अगर हम पवित्रता की शक्ति रखते हैं या वो पवित्रता की धारणा हमारे अंदर है तो बाबा ने हमें ज्ञान योग से वो बल भरा है, तभी हम वो पवित्रता के रास्ते पर चल रहे हैं। तो प्रकृति को भी पावन बनाना है, केवल मनुष्य आत्माओं की बात नहीं, तो वातावरण के प्रभाव की तो बात ही आनी नहीं चाहिए। हम जहां जाए वहां वातावरण भी पावन हो जाए, इतनी शक्ति हो हमारे अंदर, हो सकती है। बाबा की प्रत्यक्षता क्यों नहीं हो रही है, इसका कारण यही है कि अभी हमारी जो संपूर्ण पवित्रता की स्थिति होनी चाहिए उसमें कमी है। तो हम सब नंबरवार तो हैं ही, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, यथा योग्य हैं, यथा शक्ति हैं, ब्रह्मचर्य में सभी पास हैं, उसको बाबा कहता है ना कि उस लेवल तक तो सभी पास हैं, लेकिन उसके आगे हम कहाँ तक पहुंचे हैं वो हमारी, हमारा चार्ट हमको खुद रखना पड़ेगा कि मेरी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में अभी तक कहाँ तक कमी है और कैसे मुझे अपनी उस पवित्रता की स्थिति को पाना है। बाबा कहते हैं मानो आज तक कोई गलतियां हुई होंगी, क्योंकि भले ज्ञान में आ गए हम पर इतनी गहराई से हमें उसकी समझ नहीं, या उतना कितना नुकसान कर सकती है इम्प्यूरिटी, ये भी हमें ज्ञान नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो अगर हमने अब तक कुछ गलतियां की तो बाबा कहता है अपना चार्ट ना, अपना जैसे पत्र लिख दो बाबा को, बता दो बाबा ये सारे, क्योंकि अगर बाबा को हमने सही सही रियलाइज कर लिया तो आधा हमारा माफ हो जाएगा और बाकी के लिए भी, आगे के लिए भी हमें बाबा से शक्ति मिलेगी कि वो गलती फिर हमसे नहीं होगी, वो हम उसको जीतने में, माया जीत बनने में हम सक्षम हो जाएंगे। फिर बाबा प्यूरिटी को ऑनेस्टी भी कहता है, माना प्यूरिटी की एक स्टेज है मन में सच्चाई सफाई हो, सच्चाई ना सत्यता, वो भी पवित्रता की एक स्थिति। प्यूरिटी इज रियलिटी एंड प्यूरिटी इज रॉयल्टी, है ना, बाबा हमें प्यूरिटी की रॉयल्टी कहते हैं और वो रॉयल्टी है रियलिटी से, अंदर बाहर एक होना। इतनी सच्चाई हो कि जो हमारे अंदर हम सोचते हैं वही बाहर में हमारे बोल और कर्म होते हैं, या आपस में भी हम व्यवहार में आते हैं तो ऐसे नहीं अंदर कुछ और बाहर कुछ नहीं, या फिर कोई हमसे ऐसा गलत हो गया उसके लिए कई लोग फिर झूठ बोल देते हैं ना, तो झूठ का सहारा नहीं, हो गया गलत तो गलत को गलत मान करके फिर जो भी उसके लिए माफी लेनी है हमें या रियलाइज करना है वो हम करें। लेकिन कई बार हम अपने नाम मान शान को बचाने के लिए, अपने मान को बचाने के लिए, लोग झूठ क्यों बोलते हैं, अपने को बचाने के लिए ही बोलते हैं ना कि मेरी बात सामने नहीं आनी चाहिए, अगर मेरी बात सामने आ गई तो फिर ये क्या समझेंगे, ये समझेंगे अच्छा हम ऐसे करते हैं या हम ऐसी गलती कर दी हमने या हमें कमजोर मान लेंगे जो भी, तो अपने को बचाने के लिए फिर हम उसका सहारा लेते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा चलो आत्माओं के सामने तो आपने बचा लिया, वो मान भी लेते हैं ठीक है आप इतना बता रहे हो तो सही हो, आप ही सही हो, लेकिन भगवान से छुपा सकते हैं? बाबा से तो कुछ भी छुपा नहीं है। तो इसीलिए फिर बाबा के दिल पर हम नहीं रहते, क्योंकि सच्चे दिल पर सह राजी होता है। अविनाशी प्राप्ति से हम वंचित हो जाते हैं। बाबा से जो हमें सुख मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए, वो फिर हमें अनुभव नहीं होती है। तो हमें कौन सी प्राप्ति चाहिए, कौन सी प्राप्ति चाहिए? और कई बार जब भी हम अपनी गलती मानते हैं तो कोई हमें छोटा नहीं समझते, बल्कि और ही उनका विश्वास हमारे ऊपर बढ़ जाता है कि ये सच्चे हैं, हाँ, ये कभी भी अपनी बात को छुपाते नहीं है। तो ईमानदारी यानी ऑनेस्टी, जितनी हमारे अंदर ऑनेस्टी होती है उतना हम भगवान का दिल जीत लेते हैं। तो ये सब प्यूरिटी की स्थितियां हैं हमारी, जो संपूर्ण पवित्रता यानी इन सब को हम, जैसे हम कहेंगे कि माया जीत बने हम, प्रकृति जीत बने, जगत जीत बने, वो हमारी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति होगी, जो हमारा लक्ष्य है। और अगर उसमें हम कम रह गए, उसमें हम अगर कम रह गए, तो फिर उसी अनुसार हमारी भविष्य प्रालब्ध बनने वाली है, या उसी अनुसार फिर हमारा पद बनने वाला है। तो फिर हमारा लक्ष्य तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने का है ना। आज भी बाबा ने मुरली में ये बात कही कि हम सब क्या बनना चाहते हैं, तो फिर हमारा पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए, नंबर वन है ना, वही पुरुषार्थ हो। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे दीदी जी को संपूर्ण पवित्रता की सूक्ष्म परिभाषा भी और प्रैक्टिकल करने के लिए भी आपने बहुत अच्छा गाइड हम सबको किया। और वैसे लगभग ये भट्टी का लास्ट ही क्लास था, तो जैसे बाबा ने ठप्पा लगाया है लास्ट पवित्रता का, तो हम इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स करेंगे।